की जाती भई अर्हंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल ही सलाए पूजो के सतत केवल ज्ञान पाने पूजो के सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले दिनों अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए विचार किया है और विचार के साथ साथ अपने जीवन को अच्छा बनाने का अभ्यास भी प्रारंभ किया है। उस अभ्यास के चलते सुबह दोपहर शाम जितना समय हमें मिलता है हम अपने व्यस्ततम जीवन में से जितना समय निकाल पाते हैं उतने समय में हम पांच पापों से मुक्त होकर पंच परमेश्वरी के गुणों का चिंतन करें। इतना ही नहीं, पंच परमेश्वरी के द्वारा कहे गए धर्म का हम अपने जीवन में आचरण करने के लिए संकल्पित हों, भावना भाएं। ऐसा हमने पिछले दिनों विचार किया है और उस अभ्यास को भी शुरू किया है। इस तरह के अभ्यास में चार बातों की सावधानी रखनी जरूरी होती है। हमारा अपना शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। शरीर स्वस्थ होने का मतलब क्या है? उसमें कोई रोग इत्यादि नहीं होना चाहिए, ये शरीर की स्वस्थता है। लेकिन इतना ही अर्थ नहीं है, शरीर आलसी ना हो तो वो शरीर स्वस्थ माना जाता है, भले ही रोग से ग्रसित क्यों ना हो। व्यक्ति किसी भी रोग से ग्रस्त ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सबके एक रोग तो लगा ही है, क्षुधा और पिपाशा का रोग, ये तो सबके ही लगा हुआ है। तो वैसे क्षुधा और पिपाशा के रोग के साथ किया ही नहीं जा सकता फिर अभ्यास। तो आचार्य भगवंत द्रव्य की शुद्धि के मायने शरीर कैसा शुद्ध हो, आलस से रहित हो, अनुत्साह हमारे शरीर को आलसी बना देता है। इसलिए जब भी अपने राग द्वेष से बचने का, अपने वितराग स्वभाव को प्राप्त करने का, या कि पंच परमेष्ठी के गुणों का चिंतन करने का, या कि पापों को छोड़ने का ऐसा अवसर प्राप्त हो तो अत्यंत उत्साहपूर्वक मैं उस प्रक्रिया को शुरू करूं। मन में और शरीर में कहीं कोई आलस ना हो। अनादर का भाव ना हो, और जिस स्थान पर बैठकर मैं अपनी विषमताओं के बीच भी समता भाव रखने का अभ्यास करूं, वो स्थान पवित्र हो। निर्व्याक्षेपे वनेषु च चैत्यालयेषु वापि च, चाहे वो निर्जन स्थान हो, चाहे वो चैत्यालय हो, जिस स्थान पर भी हम बैठे वो स्थान निर्बाध हो, किसी को उस स्थान पर बैठने से बाधा ना हो और किसी से हमें भी बाधा उत्पन्न ना हो, ऐसा स्थान तो बहुत मुश्किल है कि ऐसा स्थान मिले। तब क्या करना चाहिए? हम एक अपना कोई भी स्थान निश्चित कर लें, उस स्थान पर ही रोज बैठें तो वो स्थान योग हो जाएगा, फिर उसमें कहीं कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी और हमारी एकाग्रता सहज रूप से उस स्थान पर पहुंचने पर बन जाएगी। और काल की शुद्धि, सुबह दोपहर और शाम, ये तीनों काल जिन्हें संध्या काल कहते हैं वो पवित्र मानेंगे, उन काल में करें। एक बात लेकिन शेष बच गई, क्या विचार करें, मुझे क्या उपलब्धि होनी चाहिए, इस पर मैंने पहले विचार कर लिया है कि अब मैं अपने संदर्भ में ही विचार करूंगा, अब मैं अपनी सहनशीलता बढ़ाकर अपनी क्षमता को बढ़ाऊंगा, अपनी प्रतिक्रिया जो कटुतापूर्ण है उसे सौहार्दपूर्ण बनाऊंगा। इतना ही नहीं, अपनी चेतना को इस तरह से परिष्कृत करूंगा कि जिससे मेरा व्यवहार सहज हो सके। ये सारी चीजें ध्यान में रख करके मैंने इस प्रक्रिया को शुरू किया है, उन सारी चीजों पर भी विचार कर लिया है कि हाँ, ये सब उपलब्धियां मेरे जीवन में होनी चाहिए इस प्रक्रिया के दौरान, ताकि मैं प्रक्रिया करते करते ये देखता रहूं कि मुझे वो चीज प्राप्त हुई या नहीं हुई। वरना प्रक्रिया भर शेष हमारे हाथ में रह जाती है और उससे जो प्राप्ति है उससे हम वंचित रह जाते हैं। रिचुअल्स किसे कहते हैं? जिनके पीछे छिपा हुआ उद्देश्य खो जाता है और क्रिया शेष रह जाती है, वो सब चीजें रिचुअल कहलाती हैं। अंधविश्वास, ट्रेडिशंस, परंपराएं बन जाती हैं, लोग दोहराते हैं उनको, लेकिन उन परंपराओं को दोहराने से हमें क्या प्राप्त होना चाहिए इसके बारे में हमें मालूम ही नहीं होता, या मालूम भी होता है तब भी हमारा प्रयत्न उन चीजों को प्राप्त करने का नहीं, मात्र क्रिया को दोहरा लेने का होता है। इसलिए आवश्यक है कि इससे पहले कि हम प्रक्रिया को शुरू करें, हम जान लें कि उस प्रक्रिया से क्या हमें प्राप्त करने योग्य है। हमने जाना कि प्राप्त करने योग्य तो एक सहज व्यवहार है, प्राप्त करने योग्य तो चेतना की विशुद्ध अवस्था है, मुझे अपनी दिन भर की प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना है। खाने पीने की अच्छी चीज देखी, मन डोल गया, प्रतिक्रिया क्या है? यही तो करते हैं हम, रागान्वित हो गई, जो हमारे लिए पसंद नहीं है वो चीज दिखाई पड़ती है, उसे हटाने का मन होता है, ये द्वेषात्मक प्रतिक्रिया है। वो क्षण जो मेरे अभ्यास के हैं, समता के अभ्यास के क्षण हैं, उन क्षणों में मैं इस तरह की प्रतिक्रिया से ऊपर उठ जाऊं, मुक्त हो सकूं। चॉइसलेस अवेयरनेस, एक ऐसी जागृति मेरी उन क्षणों में रहे जबकि मैं किसी भी तरह के राग द्वेषात्मक चुनाव में न पड़ो। जिस चीज को भी मैं चाहता हूं उससे मेरा रागात्मक जुड़ाव होता है, जिसको मैं नहीं चाहता हूं उसके प्रति मेरी प्रतिक्रिया द्वेषात्मक होती है। ठीक है, दिन भर तो मैं इसी तरह से करता हूं, लेकिन कुछ क्षण तो मेरे जीवन में ऐसे होना चाहिए जब मैं इस राग द्वेष रूप प्रतिक्रिया से बचूं। ये अभ्यास हमने पिछले दिनों शुरू किया है और इसकी छाया हमारे शेष कार्यों पर भी पड़ने लगे, ये भी हमें देखते रहना चाहिए कि अभी तो मैं जितनी देर पंच परमेष्ठी के ध्यान में बैठता हूं उतनी देर ही मेरी प्रतिक्रिया ठीक रहती है या कि मैं प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाता हूं। अब ऐसा ही मैं शेष समयों में भी करने लगूं तो मेरा अभ्यास सार्थक हो जाएगा, ये पुरुषार्थ और करना है। अब विचार क्या करें हम उन क्षणों में बैठ करके, तो आचार्य भगवंतों ने आचार्य समंतभद्र स्वामी के चरणों में बैठे तो उन्होंने एक श्लोक में बहुत स्पष्ट रूप से सामायिक के समय क्या विचार करना चाहिए इसका उल्लेख किया है। अशरण अशुभ अनित्यम दुख मनात मान माव स्वामी भवम मोक्षस्तद विपरीतात एति ध्यायन्तु सामयिके। सामायिक में इस बात का ध्यान करें, इस बात का अनुचिंतन करें कि यह संसार कैसा है और वह जो मेरी मुक्त अवस्था है, जो मेरा प्राप्तव्य है, गंतव्य है, वो कैसा है। यह संसार अशरण है, अशुभ है, अनित्य है, दुख रूप है, मेरे अपने आत्म स्वरूप से विपरीत है, अनात्मानम मोक्षस्तद विपरीतात्। मेरी जो वास्तविक मुक्त अवस्था है, परम विशुद्ध अवस्था है, भगवत अवस्था है, वो अत्यंत इससे विपरीत है, यानी शुभ है, शरणभूत है, शाश्वत है और सुखरूप है। अगर इस तरह हम निरंतर विचार करें तो वास्तविकता का विचार करने से हमारी व्यवहारिक जो अवस्था है वो बदलती है। भीतर में यदि हमारे विचारों में स्पष्टता आती है तो व्यवहार में परिवर्तन आता है। सेठ जी रिक्शे में बैठ करके जा रहे हैं, एक बहुत भीड़ का वातावरण देखकर बेदूर खड़े रिक्शे में ही, और उस भीड़ के बीच देखते हैं तो कोई जमीन पर पड़ा है, लोग कह रहे हैं एक्सीडेंट हो गया है, पता नहीं प्राण बचे कि नहीं। दूर से देखने पर सेठ जी को लगता है कि जैसे मेरा ही बेटा है। यह इतना सा विचार उनके लिए बहुत भारी पड़ जाता है, वे उस रिक्शे में ही गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। उस भीड़ में हल्ला हो जाता है कि ये रिक्शे में जो सेठ जी बैठे हैं उनको क्या हुआ, यहां तो ये एक्सीडेंट हुआ है। उस भीड़ में सेठ जी के मित्र भी हैं, वे फौरन दौड़ करके आते हैं, सेठ जी को देखते हैं और कारण पर विचार करते हैं कि कारण क्या हुआ। तो जिस जगह सेठ जी गिरे हैं रिक्शे में उसी जगह खड़े होकर के वो एक भीड़ में देखते हैं तो वहां पड़ा हुआ व्यक्ति ठीक सेठ जी के पुत्र जैसा दिखाई उन मित्र को भी पड़ता है। बात समझ में आ जाती है कि बात यह है, फौरन बेटे को बुला लेते हैं, आओ, और बेटा सामने आके खड़ा है और सेठ जी को होश में लाते हैं। सेठ जी एक नजर उठाकर देखते हैं और इससे पहले कि वो कहें कि मेरे बेटे को क्या हुआ, बेटा सामने खड़ा हुआ है, तो सेठ जी एकदम स्वस्थ और प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी बेहोशी का कारण क्या था और उनके ठीक हो जाने का कारण क्या था? वास्तविकता की जगह उन्हें भ्रम पैदा हो गया था कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, और जैसे ही वास्तविकता मालूम पड़ी संसार बदल गया। हमारे अपने जीवन में हमें अगर वास्तविकता का भीतर में अनुभव हो जाए, बाहर से नहीं, बाहर से सब वास्तविकता जानते हैं, लेकिन भीतर में ऐसी अनुभूति हो जाए कि सचमुच यह संसार अशरण है, मैं यहां साथ किसका ढूंढता, मैं जिसका भी साथ ढूंढता हूं वो मेरे साथ आया कहां है, आया नहीं है, वो मेरे साथ जाएगा भी नहीं, ये जो बीच वाला टाइम है उसमें भी मेरा साथ कितना निभा पाता है, साथ तो नहीं निभा पाता है। मैं उससे अपेक्षा जरूर रखता हूं कि ये मेरा साथ देगा, लेकिन मेरे सुख को ये शेयर नहीं कर पाता, मेरे दुख को बांट नहीं पाता, मेरे सुख दुख के लिए तो मैं अकेला ही हो जाता हूं। फिर यह जो मेरा साथी कहलाता है ये मेरे जरा भी काम नहीं आता, मेरी सांसें पूरी होने लगती हैं तो मैं किसी के सामने भी हाथ फैलाऊं तो वो मुझे दो सांसें नहीं दे सकता। अरे अब समझ में आया कि यहां मैं इस संसार में शरण चाहता हूं, जहां जहां यहां शरण है नहीं, यह संसार अशरण है, ऐसा कहीं भीतर में आना चाहिए। ऐसा आने से कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, नहीं तो आप ये सोचें कि ऐसा विचार आते ही सबको छोड़ छाड़ करके मेरी क्या स्थिति बनेगी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस मेरे मन में जो औरों से अपेक्षाएं हैं वो घट जाएंगी और अपेक्षा ही मेरे दुख का कारण है संसार में, और कोई व्यक्ति मेरे दुख का कारण नहीं, मेरी अपेक्षाएं मेरे दुख का कारण, और अपेक्षाएं तब होती हैं जब मैं किसी को अपना मानता हूं, उससे अपेक्षाएं होने लगती हैं। अब मुझे किसी से अपेक्षा नहीं है, मेरे सब अपने हैं जरूर, पर अपेक्षा किसी से नहीं है, क्यों नहीं है, मैं अपने सुख दुख के लिए यहां किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता, कोई मेरा सुख दुख में शेयर नहीं कर सकता, मुझे वो अकेले ही एकाकी होकर के ही मुझे अपने सुख दुख को भोगना पड़ेगा। ऐसा विचार आते ही अपने सुख दुख में हम अपने आप ही समता भाव रखने लगते हैं, ठीक है जब मुझे ही सहन करना है तो फिर सुख में एक्साइटेड होने की और दुख में डिप्रेस होने की कहीं कोई बात नहीं आएगी। देखो अच्छा चले जाते हैं रास्ते से छोटे से बच्चे, कहीं धक्का लगता है या मस्ती करते हैं गिर जाते हैं, आसपास देखते हैं कोई तो नहीं है तो झड़ा करके आगे बढ़ जाते हैं, और मां दिख जाए अगर तो ऊ करने लगेंगे, अब भी रोना शुरू, सिंपैथी दिख गई तो अब कोई है तो मुझे संभालेगा, नहीं संभालेगा तो तकलीफ, संभालेगा तो अहंकार की देखा मुझे कोई है यहां संभालने वाला। अब ये इतनी पराधीनता तो नहीं, और अगर कोई नहीं दिखता तो क्या होता, सब चुपचाप झड़ा झड़ा करके अपना, जोर से लग भी गई हो तब भी अब किससे कहना, चुपचाप रहो सहन करो और आगे चलो, ये आता है कि नहीं आता। ऐसा ही अभ्यास अगर हमें हो जाए तो अपने सुख दुख के बीच में और ऐसा विचार करके कि संसार में शरण कोई नहीं है मेरे लिए, मुझे अपनी ही शरण लेनी चाहिए, मुझे अपने ही आत्म स्वभाव की शरण लेनी चाहिए, मुझे अपनी ही विशुद्ध अवस्था की तरफ उस समय ध्यान जाना चाहिए, अगर ऐसा विचार आ जाए तो वही शरणभूत है मेरे लिए, संसार में और कोई शरणभूत नहीं है, मेरा अपना जो शुद्ध स्वरूप है या जो परमात्म स्वरूप है वो मेरे लिए शरणभूत है, संसार में और शरण कुछ भी नहीं है, और अशुभ है संसार, यहां जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, इल्यूजन जिसको अपन कहते हैं, जैसे कि कोई हिरण बहुत तेज धूप में प्यासा मरुस्थल में भागता है तो थोड़ी दूर उसे पानी चमकता हुआ झिलमिल झिलमिल करता दिखाई पड़ता है, वो वहां पहुंचता है उसके पहले ही वो झिलमिलाहट और आगे ट्रांसफर हो जाती है, वो वहां तक पहुंचता है, वो उससे और आगे बढ़ जाती है। इसको कहते मृग मारीचिका, इल्यूजन है, ये एक भ्रम है। यहां जो जैसा है दिखता, जिसमें सुख है वहीं से दुख निकलने लगता है। मजा ये है, ये इसका अशुभ बना है। अशुभ कारणों से यह संसार उत्पन्न होता है, मेरे राग दोष से यह संसार निर्मित हुआ है, इतने अशुभ कारणों से उत्पन्न हुआ है और मुझे ये अशुभ की तरफ ही ले जाता है। जिन चीजों में मैं सुख का भ्रम करता हूं वहां मुझे दुख प्राप्त होता है। जैसे कि दुष्यंत कुमार को लिखना पड़ा, बहुत प्रसिद्ध है उनका ये गजल साई में धूप। हां, यहां दरख्तों की साई में धूप लगती है, चलो और यहां से चले उम्र भर के लिए। कुल दो पंक्तियों में संसार की वास्तविकता का वर्णन करके रख दिया कि यहां हमने सोचा था कि दरख्त यानी पेड़ के नीचे तो छाया मिलेगी, लेकिन यहां तो दरख्तों की साये में भी धूप लगती है। चलो और यहां से चले उम्र भर के लिए, कभी इस संसार में लौट के आना ना पड़े। यहां तो जिन जिन चीजों में मैं सुख मानता हूं उन्हीं से मुझे दुख निकलने लगता है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो इस दौड़ में शामिल होता हूं कि शायद सुख मिलेगा यहां, लेकिन ये भ्रम है मेरा। जैसे कि बहेलिया दाने फैलाता है और दाने खाने की चेष्टा करने वाला ऊपर दाने के बिछे हुए जाल में फंस जाता है, ठीक ऐसा ही है। जैसे कि कांटे में खाने की चीज देखकर लपकती है मछली और कांटा उसके गले में छिद जाता है, ठीक ऐसे ही यहां हम सब के साथ ये चीज घटित होती है। पांच इंद्रिय और मन के विषयों की दौड़ में शामिल होते हैं और उसी में फंस करके प्राणांत हो जाता है। और ये अत्यंत अशुभ है ये संसार, ये भीतर से आवाज आनी चाहिए मेरे कहने से, ये अपने अंदर से आवाज निकले। जिस दिन खाली बैठे हैं, शांत सुबह दोपहर शाम अभ्यास कर रहे हैं, तब अंतरात्मा से ये आवाज निकलेगी, है तो ऐसा ही है। अब क्या करना, अब ऐसी स्थिति में तो अत्यंत विरक्त हो जाएगा व्यक्ति, कुछ भी नहीं सुहाएगा, सब बेमानी मालूम पड़ेगा संसार में, तो फिर रहना मुश्किल हो जाएगा। और रहना इसी में, हां, इससे पार होने के लिए भी इसमें से ही गुजरना पड़ेगा। बस इतना ही आ जाएगा कि अलुप्तता हो जाएगी और कुछ नहीं। भ्रम टूटने के बाद, जैसे सुबह नींद खुलने के बाद जो जो सपने में देखा है वो फिर मन को सुख और दुख नहीं देता, हंसी आती है कि देखो तो क्या क्या देख रहे थे। जैसे ही आंख खुलती है तब बाकी नींद में तो सब ठीक मालूम पड़ता है। ठीक ऐसे ही अभ्यास के दौरान अगर ऐसी नींद हमारी खुल जाए और भ्रम टूट जाए, वास्तविकता मालूम पड़ जाए, संसार का अशुभपना मालूम पड़ जाए, तो फिर देखिएगा फिर अत्यंत प्रसन्नता से जीना शुरू हो जाएगा। फिर हर्ष विषाद नहीं होगा, प्रसन्नता बिल्कुल अलग चीज है, हर्ष विषाद से ऊपर उठने वाली चीज है प्रसन्नता। जैसे जल की स्वच्छता, वैसे ही मन की स्वच्छता का नाम ही प्रसन्नता। जहां राग द्वेष नहीं है ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है, कठिन नहीं है, अभ्यास करने से आ सकती है और अनित्य है। मनुष्य होकर के आया हूं, 60-70 साल मेरे तय है, मैंने खुद अपने हाथ से तय किए हैं, फिर यहां से विदा लेनी पड़ेगी। रो करके लेना हो रो करके ले सकते हैं, मुस्कुरा कर लेना हो मुस्कुरा के ले सकते हैं, हंस के लेना हो या समता भाव से विदा लेनी हो तो भी ले सकते हैं, चाहे जैसे ले सकते हैं, पर विदा लेनी पड़ेगी। मेरी मनुष्य प्रलय शाश्वत नहीं है, अनित्य है। मैं जिस जिस रूप में यहां उत्पन्न होता हूं वे सारे रूप एक निश्चित समय के लिए मुझे मिले हुए हैं, वे शाश्वत नहीं है, मैं उनमें ही शाश्वत होने का भ्रम पाल के उन्हें संभालता रहता हूं। अब जब ये मालूम पड़ जाए कि अमित है तो संभालू किसे, अभी तो सुबह से शाम तक इसे संभालता हूं या अपने आसपास पांच इंद्रियों मन के विषय उनको संभालने में लग जाता हूं। जो संभालने में लगा हुआ है उसे कभी नहीं संभालता हूं। हां, जो इन सबको संभालने में लगा हुआ है उसकी समान तो आखिरी समय याद आती है कि अरे मैं तो संभल ही नहीं पाया, मैं संभालता तो रहा सबको लेकिन स्वयं नहीं संभल पाया। अगर अनित्यता का भान हो जावे, सबने उदाहरण पढ़ा है, राजा जनक का हो चाहे भरत चक्रवर्ती का हो, कि कटोरा सिर पर रख करके पूरे राजमहल में घूम आने के बाद भी और अलिप्तता बनी रही, किस वजह से, कि मृत्यु किसी भी क्षण आकर के और मुझे ले जा सकती है, मुझे यहां से विदा लेना पड़ेगा। अगर एक कटोरे में से एक बूंद भी तेल नीचे गिर गया तो मृत्यु सामने खड़ी होगी। ऐसी अलिप्तता का भान होने पर क्या होगा, अब मरे ऐसा नहीं, ऐसे कच्चे लोगों के लिए नहीं है ये विचार। हाँ, नहीं तो आप सोचो कि ये तो ये कौन सा विचार दे दिया आपने हमारे दियो कि आप किसी भी दिन मर जाएंगे, अब उसी चिंता में ही मर गए समझ लो। ये उसके लिए नहीं है, ये विचारवान व्यक्ति बात इस तरह का विचार करके मृत्यु से भयभीत नहीं होगा बल्कि तैयार होगा। अनित्यता जान करके मैं अपने उस शाश्वत स्वरूप के तरफ बढ़ूं, इस अनित्यता में गाफिल ना हूं, ये प्रक्रिया अभ्यास की है सामायिक के समय, तो फिर अपनी मृत्यु से भयभीत होने का कोई काम नहीं है, क्योंकि मृत्यु मुझे फिर भी नहीं मार पाएगी, मैं तो शाश्वत हूं। ऐसा विचार तो फिर उस शाश्वत को संभालने की बात, दिन भर में थोड़ा सा समय अपने आप निकलेगा अपने आप को संभालने का, अभी तो अपने शरीर को और अपने पांचों इंद्रियों और मन के विषयों को संभालने में समय निकलता है, फिर चेतना को संभालने में समय व्यतीत करने का मन होगा कि अब थोड़ा अपनी चेतना को संभाल लूं। चेतना को संभालने में ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। आचार्य जी कहते हैं एक कोने में बैठ करके राग द्वेष न करो, चेतना संभल गई, बाकी सब चीजों के संभालने में बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता। अपनी चेतना को संभालना हो तो राग द्वेष से बचने के लिए बस जरा सा पंच परमेश्वर जी का स्मरण करते रहें, माला फेरते रहें, राग द्वेष से बच जाए तो समझ लो कि चेतना संभल गई। इतना ही अगर हम अपने जीवन में अभ्यास करें, उस समय विचार करें। और एक चीज और है कि संसार मुझे सुख में मालूम पड़ता है, लगता है कि यहां पर सुख तो मिलता है, भले ही थोड़ी देर को मिलता हो लेकिन मिलता तो है। मुझे भूख लगी थी, मैंने भोजन किया, अच्छा लगा, सुख मिला मुझे, लेकिन ये सुख किस तरह का है, क्या हमेशा रहने वाला है? नहीं, अभी थोड़ी घंटे दो घंटे के बाद फिर लगेगी मुझे वही वेदना, फिर से घेर लेगी। यहां तक कि सुख की वेदना भी शाश्वत नहीं है, दुख की वेदना भी शाश्वत नहीं है और सुख की वेदना भी शाश्वत नहीं है, दोनों ही चीजें हैं। इस बात का अगर हम अभ्यास कर लेवे तो बहुत आसानी से हम संसार के दुखों के बीच से गुजर सकते हैं। संसार अत्यंत दुखमय है, ये विचार हमें संसार से विरक्त करने में आसानी से कारण बन सकता है, लेकिन अभी तो ये लगता है कि सुखमय है, भले ही थोड़ा सा मिलता है। और देखो, ऐसा नहीं है मुझे थोड़ा कम मिला है, औरों को तो ज्यादा मिला हुआ है, मतलब यहां मिलता है। और ये जो अशोक नगर है ये तो छोटी जगह है, जरा बड़ी जगह में होऊंगा तो ज्यादा मिलेगा ऐसा लगता है। हाँ, यहां कुछ भी नहीं है, जरा सा एक एक किलोमीटर में घूम घाम के वापिस आ जाता हूं, जरा बड़ी जगह होगी जरा घूमने में आनंद आए। ऐसा कई बार मन में विचार आता है कि कहीं और किसी और चीज में मुझे सुख मिलेगा, है तो यहां पर सुख, वो मुझे प्राप्त नहीं है, पर मैं थोड़ा सा परिवर्तन करूं इन चीजों में, तो मैं चीजों को परिवर्तित कर करके देख चुका हूं कई बार, इसमें मिलेगा शायद, इसमें मिलेगा शायद, यहां नहीं तो वहां मिलेगा, लेकिन इसके बाद भी नहीं मिला। किसी को अगर शाश्वत सुख संसार की चीजों में मिला हो तो मुझे बताए, मुझे क्या बताना, अपने आप को ही बताओ ना, और अच्छा रहेगा। क्या इसमें मिल तो गया तो फिर दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हां फिर परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर इस चीज में मुझे सुख मिल गया है तो अब किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी से सुख मिलना चाहिए। नहीं मिलता, लेकिन बदलने में ही थोड़ा सुख मालूम पड़ता है, नहीं तो ऊब जाएंगे फिर तो। सीधी सी बात है कि यहां सुख है नहीं, ये दुखमय है संसार। यहां मैं सुख की कामना जरूर कर सकता हूं पर सुख प्राप्त नहीं कर सकता, तो फिर क्या करना चाहिए मुझे? मुझे संसार में सुख पाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, वो तो मेरे भीतर है, वहां से मुझे सुख निकालने की कोशिश करनी चाहिए, वहां मुझे सुख उद्घाटित करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं तो सुबह से शाम तक इस संसार में इस सुख को ढूंढने के लिए कोशिश करता हूं। की पीड़ा और प्रयत्न के निष्फल जाने की पीड़ा, दो दो पीड़ाएं मुझे झेलना पड़ती है। इसलिए अब मैंने विचार किया है कि संसार में सुख है ऐसा भ्रम नहीं पालूंगा, संसार दुखमय है। ठीक है, जब दुखमय है तो मैं दुखों को सहर स्वीकार कर लूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। और सहर स्वीकार कर लिया अगर तो फिर दुख दुख क्या रह गया, फिर तो खत्म ही होगा। सुख और दुख दोनों ही हमारी मानसिक अवस्थाएं हैं और कुछ भी नहीं है। जिस चीज में हम मान लेते हैं अच्छा, उसमें से सुख मालूम पड़ने लगता, जिस चीज में हम मान लेते हैं अच्छा नहीं है उसमें से दुख मिलने लगता। थोड़ी देर में वही चीज हमारा मन बदलने पर ठीक भी जान पड़ती। इस तरह यदि हम संसार के बारे में थोड़ा सा विचार रोज रोज करें, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, तो ये संस्कार हमारे भीतर प्रबल होगा। वो जो 10 मिनट का अभ्यास है सुबह दोपहर शाम, वो हमारी चेतना को परिष्कृत करेगा और हमारे जीवन को एक अच्छी दिशा देगा। हम वही तो चाहते हैं कि हमें ठीक दिशा मिले, हमारा पुरुषार्थ ठीक दिशा में हो, ताकि हम अपने प्राप्तव्य को पहुंच पा सकें। हम इस अभ्यास को दोहराएं। एक छोटी सी आपको घटना सुनाऊं, संसार किस तरह का है और उस संसार से हम कैसे धीरे से निकल सकते हैं। सिर्फ एक ही सूत्र में हम निकल सकते हैं कि यह जो संसार है ये अशरण है, अशुभ है, अनित्य है, दुखमय है। यहां जो कुछ भी प्राप्त होता है वो बहुत क्षणिक है। मुझे अपने उस शाश्वत सुख जो कि मोक्ष में है, जो कि निराकुलता में है, मुझे उसकी तरफ बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए, भावना उसी की भानी चाहिए। एक राजा साहब जब अपने बचपन में अपने एक बहुत प्यारे मित्र के साथ विद्यालय में पढ़ते थे, तब उन मित्र से इतना अधिक स्नेह था कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। पर समय ऐसा आया कि राजा साहब राजा बन गए और मित्र मित्र भिखारी बन गया, फकीर हो गया, भिक्षु हो गया, साधु हो गया, जो कहना चाहे वो कह लीजिए। वो संसार से व्यक्त होकर के और जंगल में रहने लगा और राजा संसार के बीच अपने महल में राज करने लगे। एक बार मन में आया कि मित्र से मिलूं, वैसे ऐसा होता नहीं है, जो राजा बन जाता है वो फिर सब भूल जाता है। अपन भी जब राजा बन जाते हैं तो अपन भूल जाते हैं, फिर जब अपने सुख के दिन होते हैं तो जिनने हमारी दुख में मदद की थी उनको तक भूल जाते हैं। या कि हमें कभी दुख आएगा तब किसी की जरूरत पड़ेगी, ये भी भूल जाते हैं। संसार में रहने का ढंग नहीं आता हमको। अभी अगर देखा जाए कई बार, तो अगर एक बार संसार में ठीक से रहने का ढंग आ गया होता ना तो संसार से पार हो गए होते। जैसे कि एक क्लास में ठीक ठीक से पढ़ लोगे ना तो दूसरी में जाना ही पड़ता, गुरुजी खुरई भगा देंगे कि पास हो गए चलो आगे जाओ। हाँ, लेकिन अभी पास ही नहीं हो पाए ठीक से संसार में, नहीं तो अभी तक पास हो गए होते तो यहां से विदा हो गए होते। अब राजा साहब के मन में तो आया कि मिलूं, खोजबीन की गई, जंगल में कुटी बना के रहता है मित्र, पहुंचे। अब मित्र ने कहा कि बताइए राजन, क्या सेवा कर सकता हूं आपकी। राजा ने नहीं कहा, राजा कैसे कहेगा, राजा ज्यादा ज्यादा यही कहेगा कि चलो महल में एक कमरा बनवा देते तुम्हारे लिए, यही कहेगा और क्या कहेगा। उस मित्र ने जो कि भिक्षु हो गया है उसने कहा, राजन क्या तुम्हारे लिए उपकार कर सकता हूं तुम्हारा, तुम मेरे पास आए। राजा ने कहा कि कभी विपत्ति आए जीवन में तो कुछ ऐसा सूत्र दे दो कि विपत्ति में धैर्य रख सकूं, विपत्ति से बच सकूं। ऐसा नहीं, विपत्ति तो आएगी इस संसार में, मेरे अपने कर्मों से आती है, बस इतना ही दे दो कोई सूत्र जिससे कि मैं उस विपत्ति से आसानी से पार हो सकूं, मेरा साहस बना रहे। संसार में जीने का ढंग इतना ही है, सुख भी विपत्ति की तरह आता है ये ध्यान रखना, और दुख तो आता ही है, उन दोनों के बीच में मैं भूलू नहीं, सुख में गाफिल ना हूं और दुख में विषाद से घिरू नहीं। इतना ही, इतनी ही टेक्निक है संसार में रहने की। एक सूत्र कागज पर लिखकर डिब्बी के अंदर बंद करके राजा को दे दिया, हमेशा अपने पास रखना, जब अत्यंत विपत्ति आए, सामान्य विपत्ति नहीं, अत्यंत विपत्ति की, अब इसके बाद जीवन ही शेष नहीं रहेगा, तब वो खोल करके देख लेना, सूत्र पढ़ लेना। राजा ने कहा बहुत ठीक। और वो समय भी आ गया जब राजा पर विपत्ति आई, और विपत्ति ऐसी कि अपनी सारी सेनाएं लड़ते लड़ते हताहत हो गई, राजा अकेला बचा हुआ है, सैनिक बिछुड़ गए हैं पीछे, सामने से शत्रु के सैनिक आ रहे हैं, पीछे मुड़ता है तो रास्ता आगे से बंद है, क्या करें? सैनिक शत्रु के आने में देर नहीं है और आगे भागने के लिए मेरे पास कोई अवसर नहीं है। विपत्ति अत्यंत सघन है। अब तो याद आती है अपने भिक्षु बने मित्र की, उसने डिब्बी में कोई सूत्र दिया था। पूरे स्थिर मन से डिब्बी खोल करके देखा तो कागज के टुकड़े पर लिखा था कि दिस डे विल आल्सो पास, यह दिन भी गुजर जाएगा। बस कैसा भी हो, अत्यंत सुखमय दिन हो या कि दुख से ग्रसित हो, यह सब निकल जाएगा। इतना विचार आते ही स्वस्थ और प्रसन्न होकर अपने घोड़े पर बैठे हुए हैं। विपत्ति आएगी, देखेंगे। विपत्ति आने में देर क्या है, सैनिक मुझे खोजते हुए आ ही रहे हैं शत्रु के। लेकिन ये क्या हुआ, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, घंटे भर इतना व्यतीत हो गया। वे जो सैनिक मेरा पीछा करते आ रहे थे वे कहां चले गए? शायद वे कहीं और दौड़ते हुए निकल गए। मैं यहां सुरक्षित हो गया और सुरक्षित हो करके फिर अपनी सेनाएं इकट्ठी करके राज जीत लिया, देखना। और राज गद्दी पर जैसे ही बैठे हैं और सब तरफ खुशी का माहौल है, जश्न मनाया जा रहा है खुशी का, उस समय एकदम याद आता है वही सूत्र वाक्य कि दिस डे विल आल्सो पास, यह दिन भी गुजर जाएगा। उसी क्षण गद्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं। उतने हर्ष के अवसर पर भी विरक्त होने में देर नहीं लगती राजा को। सबसे क्षमा याचना करके विरक्त होकर उसी भिक्षु के पास, अपने मित्र के पास पहुंच जाते हैं कि देख ली संसार की वास्तविकता, अब मैं विदा लेता हूं संसार से। क्या इस तरह अपन कुछ कर सकते हैं? इस सूत्र का उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं, चाहे तो कभी ऐसा अवसर आए। मेरे ख्याल से तो रोज ऐसा अवसर आता है जब हम किसी न किसी हर्ष और विषाद से घिरते हैं और हर्ष में हम भूल जाते हैं, विषाद में भी हम अपने आप को भूल जाते हैं। काश ऐसा हो सके कि हर्ष विषाद के बीच हम अपने उस वितराग स्वभाव को न भूलें और उसको ही निरंतर पाने के लिए भावना बनाए रखें। तो यही हमारे जीवन का अभ्यास हमारे जीवन को अच्छा बनाने में कारण बनेगा, इसी भावना के साथ कि हमारा जीवन अच्छा बने। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक।
उसके लिए विवाह की पद्धति रखी गई। आश्चर्य लगता है कि आचारी भगवंत ब्रह्मचरी अणुव्रत के अंतर्गत स्वदार संतोष ऐसा कह रहे हैं। स्वदार संतोष यानी जिससे विवाह किया है उसमें ही संतुष्ट रहना, यह भी तुम्हारा अणुव्रत है, तुम व्रती हो गए। बताइएगा, विवाह करने वाला भी व्रती? अपन तो कहेंगे कि विवाह करने वाला तो सब प्रकार से और संसार बढ़ाने वाला काम कर रहा है। नहीं, अनंत इच्छाएं हो सकती हैं, मन और पांचों इंद्रियों के विषय अनंत फैले हुए हैं, उनको हमने सीमित कर लिया है, इसलिए यह व्रत हो गया है। किसी एक पर ही हमारा सारा का सारा, जो कहना चाहिए हमारे मन की इच्छाएं हैं, कामनाएं और वासनाएं हैं, वो एक पर ही नियंत्रित हो गई, बाकी सबके प्रति हमारे मन में और निर्मलता आ गई है, इतना काम विवाह में हो जाता। तब तो विवाह की परिभाषा लिखी है जैन आचार्यों ने। कहते हैं कि जिससे धर्म की परंपरा और कुल की परंपरा बढ़े और अपनी इच्छाओं का भी नियंत्रण हो, ऐसी प्रक्रिया का नाम ही विवाह है। आज अपन ब्रह्मचरी अनुव्रत पर चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्मचरी धर्म पर नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मचरी धर्म पर अपन जब 10 लक्षण पर्व मनाएंगे तब बात करेंगे। इसलिए अपन जब ब्रह्मचरी अनुव्रत पर बात कर रहे हैं, स्वदार संतोष नाम का व्रत है, और वो स्वदार संतोष नाम का व्रत कहो या कि विवाह की पद्धति कहो, इस पर हमें विचार करना चाहिए। तभी इस चीज का स्वाद हम ले पाएंगे कि कैसे हम अपने 5 इंद्रिय और मन पर नियंत्रण करें। इसलिए विवाह एक सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठान है, वह कोई इस तरह का अनुष्ठान नहीं है जैसा कि आज वर्तमान में बन गया है। हमें उसको जरा सा एनालाइज कर लेना चाहिए कि वह भी हमारे कल्याण में कारण बन सकता है क्या? बन सकता है अगर उसकी प्रक्रिया ठीक से की जाएगी तब। धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ, ये तीनों पुरुषार्थ गृहस्थ के जिम्मे हैं। एकमात्र मोक्ष पुरुषार्थ करने वाले तो महाव्रती साधु हैं। गृहस्थ तो धर्म अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थ करता है, लेकिन धर्म पूर्वक ही अर्थ पुरुषार्थ करेगा और धर्म पूर्वक ही काम पुरुषार्थ करेगा। वो जो धर्म पूर्वक काम पुरुषार्थ करना है उसी को कहते विवाह, उसी को कहते ब्रह्मचर्य अनुव्रत। बताइए, इस पर जरा सा विचार करें। विवाह सिर्फ अपनी वासना की पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं की सीमा के लिए, अपने मन और इंद्रियों के विषयों को सीमित करने के लिए, और अपने धर्म की परंपरा को और अपने कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। इसके लिए कुल की परंपरा आगे बढ़ेगी संतान उत्पत्ति से, और धर्म की परंपरा पड़ेगी उस संतान को संस्कारवान बनाने से, और अपनी अपनी इच्छाएं भी सीमित हो जाएंगी। इतना काम जो है विवाह अकेले करने से होता है, इसलिए विवाह करने की प्रक्रिया भी ठीक ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे चाहे, मैं तो सोचता हूं कि जितना मुनि बनने से पहले सोचना पड़ता है कि तत्व तो निर्णय हुआ कि नहीं हुआ, परिसय उपसर्ग सहने की शक्ति है कि नहीं, संसार शरीर और भोगों से उदासीनता है कि नहीं, इतना सब विचार कर लेना तब महाव्रत अंगीकार करना। ऐसे ही विवाह करने से पहले विचार कर लेना कि अपनी धर्म की परंपरा को आने वाली पीढ़ी को देने का मेरे पास वक्त है कि नहीं, मैं अपने कुल के जो कुलाचार चला आ रहा है उसको आगे बढ़ा पाऊंगा कि नहीं, और अपने मन और इंद्रिय के विषयों को नियंत्रित कर पाऊंगा कि नहीं। इतना विचार करके विवाह करना, ऐसा नहीं कि जल्दी में आठ ही देना, नहीं भाई ते बहुत हो गई सो हमने तो तय कर ली और होगा ब्याह। अब क्या करना है ब्याह के बाद में, और ब्याह में क्या करना कोई समझ ही नहीं। मुनि बनने से पहले सोचना पड़ता है कि मुनि बन रहे हैं तो कैसे चर्या कैसे करेंगे, ऐसे ही ब्याह कर रहे हैं तो जीवन जिएंगे कैसे। जीवन जीने का ढंग एक, अकेले चलना बहुत आसान है, मनमानी करने की पूरी छूट है, चाहे जो करो कोई नहीं पूछ रहा हो, लेकिन किसी के साथ चलना बहुत ज्यादा कठिन है। उसका मन का भी ध्यान रखना पड़ेगा तब चलेगी गाड़ी, और किसी के चरणों में अपना माथा टेक करके अपना मन उसके चरणों में डाल के चलना तो सबसे ज्यादा कठिन। हाँ, एक अकेले चलने में कोई दिक्कत नहीं है चाहे जो करो, लेकिन दो के साथ चलो यानी गृहस्थ जीवन, और किसी के चरणों में अपना माथा टेक करके चलना वो तो और कठिन है। किसी के शिष्यत्व को अंगीकार करके और उसे अपना गुरु मान करके उसके अनुरूप आचरण करना, ये तो खैर बहुत ही कठिन चीज है। पर दूसरे नंबर वाली भी कठिन चीज है कि किसी के साथ जीवन जीना, उसके सुख दुख का, उसके मन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो चीज जो है उसके लिए भी अपन को और पूरी समझ के साथ इस प्रक्रिया को करनी चाहिए। 8 प्रकार के ब्याह की पद्धति कही गई है, जिसमें से 4 वैलिड हैं और 4 नहीं है। आज जो है पिछले वाले 4 का जोर ज्यादा है, पहले वाले जो 4 हैं उनकी तो कोई चर्चा विशेष अब बहुत कम लोगों में रह गई। ब्रह्म विवाह कहलाता जो कि माता पिता की आज्ञा से बिना देखे, जिससे विवाह करना है उसे बिना देखे, सिर्फ माता पिता ने जिसे तय कर दिया उसके अनुसार कर लिया, अरेंज्ड मैरिज। ये कहलाती आज की भाषा में अरेंज्ड मैरिज। लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज दो ही तरह की हैं आजकल के समय में। तो ये अरेंज्ड मैरिज है जिसमें माता पिता ने अरेंज किया है, हमने देखा भी नहीं, ये ब्रह्म विवाह की पद्धति है। फिर प्राजपत्य विवाह की पद्धति है, संभ्रांत लोगों के बीच में, और हम उस विवाह को संपन्न करते हैं। जो खानदानी है, कुल परंपरा से जिनके यहाँ पर धर्म चला रहा है, उनके साथ हम अपना विवाह इत्यादि करते, वो प्राजापत्य नाम की विवाह की पद्धति है। तीसरी आर्ष पद्धति है, जिसमें कि अग्नि की साक्षी में सप्तपदी जिसे कहते हैं, वह आर्ष पद्धति है विवाह की। और चौथी पद्धति है देव पद्धति, जिसमें कि कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान करके पहले और राजा महाराजा अपनी कन्याओं को अन्य राजा को दान स्वरूप दे दिया करते थे, वो देव विवाह की पद्धति है। ये चार पद्धतियों में से वर्तमान में श्रेष्ठ पद्धति आर्ष पद्धति मानी गई है, और बाकी आसुरी पद्धति, पैशाचिक, राक्षसी और गंधर्व विवाह की ये चार पद्धतियां अपने यहां पर मान्य नहीं है। आसुरी पद्धति यह है कि जोर जबरदस्ती करके पहले संबंध स्थापित कर लेना, ताकि फिर विवाह के लिए मजबूर ही हो जाए, आसुरी प्रवृत्ति है। आज वर्तमान में यह भी धीरे धीरे प्रचलित हो रही है। फिर दूसरी पद्धति है पैशाचिक पद्धति। पिशाच कौन सा, जिसकी चर्चा कल की थी अपन ने, कोई भूत पिशाच वाला पिशाच नहीं, परिग्रह से बड़ा कोई पिशाच नहीं है। उस परिग्रह की लोलुपता, धन संपत्ति की लोलुपता से चाहे जैसा धन मिले, मुझे तो वहां अपनी विवाह कर लेना है जहां मुझे धन संपत्ति बहुत मिलेगी। ये सब पैशाचिक धन विवाह की पद्धति है। इससे इस विवाह की पद्धति को अनुव्रत मत मानना, इस विवाह की पद्धति को धार्मिक अनुष्ठान मत मानना, ना ये सामाजिक अनुष्ठान है ना ये धार्मिक। वास्तव में तो जो आर्ष परंपरा से विवाह किया जाता है वही स्वदार्थ संतोष और वही अनुव्रत कहलाएगा और वही जो है आत्मकल्याण में कारण बनेगा। बाकी ये सब विवाह आत्मकल्याण में कारण नहीं है, ये संसार बढ़ाने वाले। इसलिए इसको ध्यान में रखना कि मैंने विवाह को परंपरा से निर्वाण का कारण बता दिया है, तो आप कंफ्यूज ना हो कि आज जो विवाह चल रहे हैं क्या वो भी नहीं, वो कहीं से कहीं नहीं आएंगे। वो सब पैशाचिक पद्धति है और राक्षसी पद्धति है कि सोते हुए को उठा करके और अपहरण करके ले जाना। वो अपहरण अलग है, जैसा कि श्री कृष्ण ने करवाया था और रुक्मणी का, उसमें तो युद्ध करके और मैं ले जा रहा हूं सबके सामने, वो नहीं है। यहां तो सोते हुए और उसको उठा करके अपहरित करके ले जाना, वो कहलाएगी राक्षसी विवाह की पद्धति। और ये जो पहले से डेटिंग करके और कहीं एकांत में मिल लेना और तय कर लेना कि अपन विवाह करेंगे, ये कहलाती गंधर्व विवाह, लव मैरिज, जिसको आज जो धीरे धीरे बहुत अधिक प्रचलित हो गई है। वो उसमें अपनी भी कमी है, अपन लोगों का प्यार नहीं मिलता बच्चों को घर में, तो कहीं बाहर किसी और को बहुत प्यार मिलता है तो फिर वो उसके अनुसार ही अपना जीवन बनाने लगता। इसमें भी परिवार की ही कमी मानी जाएगी, उन बेटे बेटी की तो कमी अपनी जगह है, वो है जो इस तरह से बहुत जल्दी एक दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं, होते ही हैं, क्योंकि जिन्हें घर में और बिल्कुल केयर नहीं होती है उनको अगर बाहर कोई केयर करने वाला मिल जाए तो बहुत जल्दी वो उसमें आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षण तो उस टाइनी एज में तो आकर्षण रहती है, 12 से 18 की टाइनी एज है, बहुत खतरनाक उपद्रव वाली उम्र है वो, जिसमें कि नाना प्रकार की क्यूरोसिटी, बहुत प्रकार की जानने की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं कि ये जानूं ये कैसा है ये कैसा है। और इन दिनों में चाहिए बहुत अधिक प्रेम, तो वो प्रेम अगर माता पिता से मिलता है, उनके पास समय है घंटों उनसे बात करने का मित्र की तरह, तो नहीं होगा, वरना ये हो रहा है धीरे धीरे, ये गंधर्व विवाह की पद्धति जो है वो प्रचलित हो रही। इनमें से अपने को ध्यान रखना कि आर्ष पद्धति से ही विवाह करना। आर्ष पद्धति में परिग्रह के परिमाण का ध्यान रखा जाएगा और भोगो भोग की सीमा रखी जाएगी। ये दोनों चीजें आर्ष पद्धति में अनिवार्य है। परिग्रह का परिमाण करके ही विवाह करना, इतना ही गृहस्थी में दहेज इत्यादि एक सीमित मात्रा में ही लूंगा, दूसरा दे भी रहा होगा बहुत अधिक मात्रा में, पर मेरा तो परिग्रह का परिमाण और भोगो भोग का परिमाण यह है कि विवाह में कितना खर्च करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा भोगो भोग में कि इतने आइटम बनना चाहिए, उनके यहां तो इतने बने थे और इतने प्रकार से और आनी चाहिए ये चीजें, ये सब भोगो भोग का परिमाण, तब कहलाएगी ये धार्मिक पद्धति है, भी वास्तव में धार्मिक अनुष्ठान। और गीत बजे तो कौन से भले जिनसे संस्कृति का पोषण हो, ये जो फूहड़ गीत बजते हैं वो नहीं है धार्मिक अनुष्ठान, उसमें तो ऐसे बचेंगे जो संस्कृति को और हमारे मन को प्रसन्न चित्त करने वाले हों और हमारे लिए वैराग उत्पन्न करने, उस अवसर पर भी वैराग बना हुआ है, क्यों मैं मुनि नहीं बन पाया मैं मां व्रत नहीं ले पाया, मेरी अपनी कमजोरी की वजह से अब मुझे यह विवाह करना है। यह एक पद्धति मुझे दूसरे नंबर की, जैसे किसी को और मने ऊंची चीज ने लेवे की क्षमता होवे सो उसे नीची जो है दई जावे तो कैसा सोचता कि लेने तो बाहती मनो अब जा मिली है चलो कोई बात नहीं। हाँ ऐसा सोच करके कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं अग्नि की साक्षी पूर्वक 7 प्रदक्षिणा लगाता हूं इस बात के लिए कि मैं भगवान के बताए हुए 7 तत्वों पर श्रद्धान रखूंगा। सप्तपदी, सप्तपदी के मायने था कि भगवान के 7 बताए हुए तत्वों पर ही उनका ही अभ्यास करूंगा, जीवन भर उनका ही श्रद्धान रखूंगा और मेरे से जितना बनेगा ये 7 तत्वों का अभ्यास अपने आने वाले संतान को भी दे करके जाऊंगा, ये श्रद्धान उसे भी हैंड ओवर करके जाऊंगा कि वास्तव में तो 7 तत्वों का श्रद्धान जो प्रयोजन भूत 7 तत्व हैं जो सच्चे देवगुरु शास्त्र के द्वारा बताए गए हैं वो ही संसार से पार करने वाले हैं, ऐसा वहां पर अनुष्ठान है, वो धार्मिक अनुष्ठान इस तरह हो जाता है तब ये विवाह जो है वो भी हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाला हो जाता है, वो भी अनुव्रत की तरह और पीठ थपथपाने लायक हो गया कि आप अनुव्रती हैं, छोटी मोटी चीज नहीं है। आज तो वर्तमान की जो विवाह की प्रक्रिया है वो कैसी कैसी हो गई सुन करके बड़ा आश्चर्य लगता है। एक बेटा अपने और बहन के विवाह के कुछ स्नैप्स मुझे दिखा रहा था कि ये दीदी का इस तरह से विवाह, उसमें एक जो है नाच गान वाला भी उसने जल्दी से पलट दिया तो मैंने कहा ये अच्छा ये होता तो था। मुझे भी याद है घर के भीतर जब बहू आती है तो सब लोग बहुत उत्साहित होकर के और उसको गोद में उठा करके और फिरते हैं पूरे घर भर में कि हमारे लक्ष्मी आई। हाँ ऐसा मतलब बहुत उत्साह होता था कि हमारे घर में जो है बहुत बड़ी चीज आ गई, अब ये इसी के जिम्मे है सारी घर गृहस्थी, बनाए तो मिटाए तो जो कछु करे क्योंकि परंपरा पूरी इसी से बनेगी। ज्येष्ठ है अगर तो और ज्यादा सम्मान होता था कि ज्येष्ठ इसी को सारा का सारा, माँ के बाद अब दायित्व इसी का है सबका। ऐसा सोच करके वो कहने लगे नहीं जी वहां घर के भीतर का नहीं है ये उत्सव तो रास्ते में होता है, ये तो महिला संगीत के नाम पर मंच पर होता है जहां अपने ही घर के लोग और बाहर के लोग बैठे रहते हैं, महिला संगीत के नाम पर फूहड़ गीत गाए जाते हैं और अपनी बहू बेटी को और नचवा दिया जाता है। ये शब्द का उपयोग कर रहा हूं, अब आपको बुरा लगे तो मान तो जाओ एक बार बुराई, सुधर तो जाए कछु हो जाए काम, बुराई नहीं लग रही आपको, बुराई नहीं मान रहे आप, लग जाना चाहिए कि हाँ सचमुच क्या कर रहे हैं हम और अपने, जबकि क्या हमारी मैंने परंपरा रही है, क्या हमारे संस्कृति रही है, क्या हमारा अपना एक स्टेटस रहा है, जीवन मूल रहे हैं कि नहीं, ऐसे फूहड़ कामों में हम अपने घर के लोगों को शामिल करेंगे क्या, नाच गान में रास्ते के चौराहे पर जो है इस तरह से, आज ये भी देखने में आने लगा। ये विवाह जो है वो धार्मिक अनुष्ठान ये नहीं कहलाएगा, ये तो विवाह का विवत्सीकरण है, विवाह को घृणास्पद बना दिया है, इससे हमें बचना चाहिए। सबसे कह रहा हूं सबके जीवन में ये अवसर आता है, बाकी आप पूजा पाठ सबकी चर्चा करूंगा मैं आपसे, अभी आने वाले हैं ब्रह्म सुख खूब कर लियो वे सब, 10 दिन आके उपवास कर लो, सब कर लो आप, लेकिन ये पद्धति ठीक नहीं होगी तो वे 10 दिन के उपवास ज्यादा आपके आत्मकल्याण में कारण नहीं बन पाएंगे, ये भी कह रहा हूं आपसे, क्योंकि ये वर्तमान में जिस तरह की स्थिति बनती चली जा रही है उससे हमारा ये जो धार्मिक अनुष्ठान है वो नष्ट होता चला जा रहा है। सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठान की हमने क्या विकृति बना दी है और खर्चे के बारे में तो सब जानते हैं कि अनाप शनाप किस तरह से जो है, और हम अपना दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं। भैया नृत्य करने का निषेध नहीं है, अच्छे गीत गाने का उस अवसर पर मंगल गान करने का निषेध नहीं है, उस समय मेकअप करने का निषेध नहीं है, लेकिन ऐसी चीजों से जो कि दूसरे जीव राशि की हिंसा से बनी हो उन चीजों से तो नहीं लिखा। सजाने की प्रक्रिया भी सब कुछ है उस विवाह के अनुष्ठान में, लेकिन उसका जो रूप आज वर्तमान में है वो बहुत दुखदाई हो गया है। अपन दिन में भी विवाह करने लगे हैं पर उसके पीछे भी और क्या स्थिति हो गई, पहले लोग रात्रि में करते थे पर फिर भी शालीनता से करते थे, धीरे धीरे करके रात्रि के विवाह में फूहड़पना आने लगा, तो अपन ने सोचा कि दिन में कर लेंगे, बहुत अच्छा करना ही चाहिए, लेकिन दिन में भी बेईमानी करने का ढंग निकाल लिया, ये ठीक नहीं है। दिन में बेईमानी करने का ढंग हमने वहां गंज बासोदा में देखा था, वहीं रुके थे और वहीं पर कहले सब दिन में ब्याह होंगे। हमने कहा ठीक, बहुत अच्छी बात है, प्रसन्न हुए हम, लेकिन दिन के ब्याह की क्या दुर्गति करी है, रात 10 बजे से भोजन बनना शुरू होता है, सब चीजें आइटम बनना शुरू, सुबह के 4 बजे तक बनते रहे और 4 बजे बना था पोहा जो कि सुबह के नाश्ते में दिया जाएगा, बाकी 10 बजे 11 बजे जो भोजन दिया जाएगा वो सब तो 10 बजे रात से 4 बजे सुबह तक बन चुका था। अपार जीव राशि थी उन दिनों और वो सब ये काले वाले कीड़े थे, सब कुछ होते हुए भी उस पूरे समय में और सारी रात वो भोजन बना और आपने दिन में खाया, लेकिन हिंसा तो आपने, जिस अनुष्ठान में हमें अहिंसाणु व्रत ग्रहण करना था उसमें हमने हिंसा करके और अपना वह विवाह संपन्न किया, उसमें हमने भोगों भोग की लालसा रखी तो क्या भोगों भोग का परिमाण करेंगे, उसमें हमने अपने धन पैसे का दिखावा किया तो क्या परिग्रह परिमाण व्रत करेंगे हम, कौन से हमने उसमें अपनी परंपरा का निर्वाह किया। और इतने ही नहीं, उसके बाद में हमने देखा कि दिन में वो पेंडाल बनाया गया था, इसमें तो सफेद लगाया है उनने उसमें, और डार्क नेवी ब्लू कलर का लगाया था। हाँ, उसका उद्देश्य क्या था, ताकि नीचे हल्की रोशनी हो जाए, बहुत मोटा और नेवी ब्लू कलर का लगा दिया और उसमें फिर लगाए थे जुगनू जुगनू वाले बल्ब, बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कि वो आकाश है और रात हो गई है और उसमें बिजली जल गई है, और पूरा डार्क कर दिया गया था अंदर, दिन की 12 बजे की रोशनी में उस पंडाल के भीतर लगता था कि रात 8 बज गए, और फिर हल्का हल्का सा वही संगीत जो 5-स्टार होटल में चलता है, और फिर उसके बाद जो है सारा अनुष्ठान हो रहा, उसी में खाना पीना हो रहा है और उसी में सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक एंड सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक समझते, शराब, अंग्रेजी शब्द है सॉफ्ट ड्रिंक, लेकिन वो सीधी सीधी वाइन है, और कोई कोई किसी को किसी की लाज शर्म नहीं। ये हमारे देखते देखते वह प्रक्रिया मंदिर के परिसर के भीतर से, आप सोच सकते हैं दिन में किया है, सोचो आप, लेकिन दिन में क्या किया आपने, जिस चीज का निषेध करने के लिए हमने दिन का विवाह करना सोचा था, वो जो रात में आप इस तरह कर लेते थे कि तांस पत्ती खेल रहे, शराब पी रहे हो और फूहड़ नाच गाने कर रहे, उससे बचाने के लिए हमने दिन में रखा था, आपने दिन में भी वही सब कर लिया जो आप, यानी अपनी मानसिकता नहीं बदली, वही के वही रहे, परिणाम अपने वही खोटे रहे। भैया कितने तो उदाहरण है अपने जीवन में हमारे आदर्श पुरुषों के, एकाध तो याद आना चाहिए, रामचंद्र जी का उदाहरण आदर्श है, लक्ष्मण जी का उदाहरण आदर्श है, उन्होंने जब सीता जी का हरण हो गया था तब क्या पहचाना था बताइए, मैं तो सिर्फ नूपुर पहचानता हूं भाभी के, मैंने तो उनका मुख भी ठीक से अवलोकन नहीं किया राग की दृष्टि से, मैंने तो सिर्फ रागान्वित होकर के उनके चरण ही देखे हैं, इसलिए उनने हाथ में क्या पहन रखा और गले में क्या पहन रखा और माथे पर बेंदी कौन सी लगाई थी मुझे नहीं मालूम, मुझे तो नूपुर रोज क्योंकि मैं उनके चरण छूता हूं। ये विवाह की पद्धति है जहां कि हम इतनी निर्मलता रखते हैं, और वही राजा रामचंद्र जी जिन्होंने कि सीता जी के हरण हो जाने पर और कितने विचलित हुए थे, कितने दुखी हो गए थे, पर दुखी होने के बाद भी अपना दायित्व समझ करके, क्योंकि पाणी ग्रहण के मायने हैं मैं तुम्हारा हाथ थामता हूं, यानी जिंदगी भर साथ दूंगा, विपत्ति में भी साथ दूंगा, ये परस्पर हाथ थामने का मतलब है एक जिम्मेदारी लेना एक दूसरे के आत्म कल्याण की, एक दूसरे के आत्म कल्याण में निमित्त बनेंगे, एक अकेले नहीं कर पा रहे थे आत्म कल्याण, कमजोर पड़ गए थे, इसलिए दो लोग एक साथ मिलकर आत्म कल्याण करने के लिए उत्सुक हुए हैं, एक दूसरे को संभालते रहेंगे, हम विषय वासनाओं में गिरने लगे तो तुम संभाल लेना, तुम्हें गिरते हुए मैं संभाल लूंगा।